एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत। मैं हूं आपकी होस्ट
और मैं आपका साथी होस्ट।
आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने, सच कहूं तो, दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया है।
हाँ बिल्कुल, डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
हिंदी में कहें तो मित्र बनाएं और लोगों को प्रभावित करें।
सही, ये किताब आई तो थी 1936 में, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी बातें आज भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही ज़रूरी लगती हैं।
शायद आज की दुनिया में तो और भी ज़्यादा है ना?
हाँ बिल्कुल, हम सब आजकल अपनी स्किल्स, अपनी डिग्री, यू नो, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं।
बिल्कुल सही कहा। ये किताब हमें वही सिखाती है कैसे बेहतर रिश्ते बनाएं, दूसरों का साथ कैसे पाएं, और हाँ, अपने लक्ष्य पाने के लिए उन्हें प्रेरित कैसे करें।
ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, ये ज्यादा है। ये है अपनी भूमिकाओं को, रोल्स को प्रभावी ढंग से निभाना और उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीखना।
और इसका जो मूल मंत्र है वो सुनने में बड़ा सीधा लगता है।
हाँ, कि अपना फोकस खुद से हटाओ और दूसरों पर लगाओ, उनकी इच्छाएं, उनका नजरिया, उनकी भावनाएं, उन पर।
आसान लगता है पर असल में एक कला है ये।
बिल्कुल,
तो इस कला के पीछे जो इंसान है, डेल कार्नेगी, उनके बारे में थोड़ी बात करें।
हाँ जरूर। उनका जन्म हुआ था 1888 में मिसौरी में, एक गरीब किसान परिवार में।
अच्छा।
कहते हैं कि शुरू में उनके मन में भी शायद अपनी हालत की वजह से थोड़ी हीन भावना थी, जिससे वो निकलना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। तो उन्होंने कई तरह के काम किए, सेल्समैन भी रहे, फिर जाकर उन्हें अपना असली रास्ता मिला।
क्या था वो?
वो था वयस्कों को, मतलब अडल्ट्स को, पब्लिक स्पीकिंग सिखाना, सार्वजनिक भाषण।
अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग कोच।
हाँ, और वहीं पढ़ाते हुए उन्हें एक बड़ी बात समझ आई। उन्होंने देखा कि लोगों को सिर्फ मंच पर बोलना नहीं सीखना, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की बातचीत में, व्यवहार में, मतलब लोगों से डील करने में बेहतर होने की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है।
हाँ ये बात तो है, स्टेज पर बोलना एक बात है और रोज लोगों से मिलना जुलना दूसरी।
बिल्कुल, और यही जो उनका अनुभव था ना, वही इस किताब को इतना खास बनाता है। ये कोई किताबी बातें नहीं है,
थ्योरी नहीं है।
नहीं, कार्नेगी ने सालों तक कोर्स चलाए और उन कोर्सेस को एक तरह की लैब बना दिया।
लैब कैसे?
मतलब वो देखते थे कि कौन सी तकनीक काम कर रही है। असल में हजारों लोगों पर बार बार उन्होंने सफल लोगों को भी स्टडी किया, पर उनका जोर हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पर रहा।
अच्छा, मतलब जो काम करता है वही सिखाओ।
एग्जैक्टली। उनका जो एम्पिरिकल अप्रोच था, अनुभव पर आधारित, वही उनकी ताकत है। वो कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल कोच की तरह है।
समझ गई। तो फिर ये किताब किस बारे में है, थोड़ा और बताएं।
देखिए, ये असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है, सामाजिक व्यवहार और परसुएशन, यानी लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं, कैसे साथ लाएं, इसके बुनियादी कौशल सिखाती है।
ओके।
इसका मकसद सीधा है, जीवन के हर पहलू में, काम में, समाज में, परिवार में, रिश्तों को बेहतर बनाने का एक साफ, एक्शन लेने लायक तरीका देना।
तो ये हर किसी के लिए है?
हाँ बिल्कुल, हर उस व्यक्ति के लिए जो दूसरों के साथ अपनी बातचीत को, अपने इंटरेक्शंस को ज्यादा असरदार बनाना चाहता है।
जैसे कि?
जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, टीम को प्रेरित करना चाहता है,
या
कोई सेल्स वाला है, डील पक्की करना चाहता है, या बस कोई भी जो अपने आसपास के लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ना चाहता है। कार्नेगी को तो मानना था कि हमारी जो आर्थिक सफलता है, करियर है, यहाँ तक कि हमारी खुशी भी, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम लोगों को कितनी कुशलता से संभालते हैं।
बात तो सही लगती है। और किताब का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये पढ़ने में आसान है?
हाँ बहुत सीधा है, चार मुख्य हिस्सों में बटी है और हर हिस्से में कुछ सिद्धांत हैं जो आसानी से याद रह जाते हैं।
ओके।
ये शुरू होती है बिल्कुल बेसिक बातों से, जैसे आलोचना ना करना, फिर बताती है कि लोगों को सच में कैसे पसंद आए, फिर सिखाती है कि बिना बहस किए लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं, और आखिर में लीडरशिप पर बात करती है।
और आपने कहा था कि इसमें कहानियां भी हैं?
हाँ, खूब सारी, इतिहास से, मशहूर लोगों की जिंदगी से, और कार्नेगी के अपने स्टूडेंट्स के अनुभवों से। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये हमारे व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है।
मतलब इससे सिर्फ पढ़ना नहीं, इस्तेमाल करना है।
बिल्कुल, कार्नेगी खुद कहते हैं कि इसे वर्किंग हैंडबुक की तरह इस्तेमाल करो, अभ्यास करो।
अच्छा, तो चलिए कुछ मुख्य सिद्धांतों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला भाग आपने बताया, लोगों से व्यवहार करने की मौलिक तकनीकें।
हाँ, और इसमें पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें।
ये तो बहुत मुश्किल लगता है।
है, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना बेकार है, क्योंकि जैसे ही आप किसी की आलोचना करते हैं वो डिफेंसिव हो जाता है।
अपनी गलती मानने की बजाय खुद को सही ठहराने लगता है।
एग्जैक्टली, और इससे उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, मन में कड़वाहट आ जाती है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अल कैपोन जैसे बड़े अपराधी भी खुद को बुरा नहीं मानते थे।
अरे बाप रे!
तो आलोचना से कुछ हासिल नहीं होता। बेहतर है हम समझने की कोशिश करें कि लोग वैसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, थोड़ी सहानुभूति रखें।
ये एक बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। और कोई सिद्धांत इस भाग में?
हाँ, एक और बहुत जरूरी है, दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाएं।
तीव्र इच्छा मतलब?
मतलब किसी से कुछ करवाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उन्हें वो करने के लिए इच्छुक बनाएं, मोटिवेट करें।
और वो कैसे होगा?
उनके नजरिए से सोचकर। हम क्या चाहते हैं सिर्फ ये बोलने से बात नहीं बनेगी, हमें ये सोचना होगा कि वो क्या चाहते हैं और हमारी बात मानने में उनका क्या फायदा है।
अच्छा, मतलब उनके फायदे की बात करें।
हाँ, जैसे वो एक मशहूर उदाहरण है ना, उस खत का, जिसने कंपनी को किराया कम करने पर राजी कर लिया था।
हाँ, सुना है मैंने।
उस खत में भेजने वाले ने अपनी परेशानियां नहीं गिनाई थी, उसने बताया था कि किराया कम करने से मकान मालिक को क्या क्या फायदे होंगे।
वाह, ये तो कमाल की ट्रिक है।
ट्रिक नहीं, ये समझ है। कार्नेगी का एक मशहूर कोट भी है इससे जुड़ा, लोगों को प्रभावित करने का दुनिया में एकमात्र तरीका ये है कि वे क्या चाहते हैं इस बारे में बात करें और उन्हें दिखाएं कि इसे कैसे प्राप्त करें।
ये तो गांठ बांध लेने वाली बात है।
बिल्कुल, सेल्स हो, मैनेजमेंट हो या घर हो, हर जगह काम आती है ये।
अच्छा, अब आते हैं भाग दो पर, लोगों को पसंद कराने के तरीके। इसमें क्या खास है?
इसमें कई अच्छे सिद्धांत हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद है वो है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें।
सच्ची दिलचस्पी, फेक नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्नेगी का दावा है कि आप 2 महीनों में दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने 2 सालों में दूसरों को आप में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश करके नहीं बना सकते।
ये तो बहुत गहरी बात कह रही।
हाँ, मतलब फोकस खुद से हटाओ, सामने वाले पर लाओ। थियोडोर रूजवेल्ट जैसे इतने व्यस्त नेता थे, वो भी अपने छोटे से छोटे कर्मचारी की बातें याद रखते थे, उनके बारे में पूछते थे।
तो जब आप किसी में सच में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो महसूस होता है।
बिल्कुल, और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ खींचते हैं।
और कोई तरीका?
एक बहुत ही सरल पर बहुत शक्तिशाली तरीका है, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है।
हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है, जब कोई मेरा नाम सही से लेता है तो अच्छा लगता है।
सबको लगता है, नाम भूलना या गलत बोलना एक तरह से अनादर जैसा है। नाम याद रखना और इस्तेमाल करना, ये छोटी सी बात है पर ये दिखाती है कि आप सामने वाले को महत्व देते हैं।
फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जैसे बड़े नेता भी ये करते थे।
हाँ, वो मैकेनिकों तक के नाम याद रखने की कोशिश करते थे, सोचिए।
कमाल है।
और इसी से जुड़ा है अच्छा श्रोता बनना, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें।
हाँ, ज्यादातर लोग तो खुद के बारे में ही बात करना चाहते हैं।
सही कहा। तो अगर आप ध्यान से सुने और ऐसे सवाल पूछें जिनसे उन्हें अपने बारे में बताने में मजा आए, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको एक बेहतरीन बातचीत करने वाला समझेंगे, भले ही आपने खुद कम बोला हो।
ये तो बढ़िया टिप है। अब आते हैं भाग 3 पर, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे जीतें। मतलब यहां बात सिर्फ पसंद आने से आगे की है।
हाँ, यहां बात है लोगों को अपनी बात पर सहमत कराने की, पर कैसे? बिना बहस किए, बिना टकराव के।
ओके, तो पहला सिद्धांत क्या है?
पहला और बड़ा बोल्ड सिद्धांत है, बहस से बचने का एकमात्र तरीका है उससे बचना।
क्या? बहस से बचना? पर अगर हम सही हों तो?
कार्नेगी कहते हैं बहस कभी जीती नहीं जा सकती। लॉजिकली शायद आप जीत जाएं, पर रिश्ते के लिहाज से हार जाते हैं। अगर आप हारते हैं तो हारते ही हैं, और अगर जीतते हैं तो भी हारते हैं।
ये कैसे? जीतने पे क्यों हारते हैं?
क्योंकि आपने दूसरे को नीचा महसूस कराया, शायद एक दुश्मन बना लिया, उसके मन में कड़वाहट रह गई।
ये तो सोचने वाली बात है, बहस से रिश्ते वाकई खराब होते हैं।
बिल्कुल, तो बेहतर है असहमति को सीखने का मौका समझें, शांति से सुने, सहमति के बिंदु ढूंढें। कार्नेगी का एक और कोट याद आता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध कायल किया गया व्यक्ति अभी भी उसी राय का होता है।
मतलब जबरदस्ती मनवाने से दिल नहीं बदलते।
बिल्कुल, सच्ची सहमति सहयोग से आती है, टकराव से नहीं।
ठीक है, और क्या है इस भाग में?
एक और अहम बात, ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें।
वही सहानुभूति वाली बात।
हाँ, पर यहाँ इसका मकसद है उन्हें समझना, ताकि आप उन्हें प्रभावित कर सकें। उनकी जगह खुद को रखकर सोचें, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उनके हित क्या हैं, जब हम ये समझने लगते हैं तो रास्ता निकालना आसान हो जाता है।
अच्छा, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तब क्या?
तो कार्नेगी कहते हैं, यदि आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोर देकर स्वीकार करें।
अपनी गलती मान लें फौरन।
हाँ, फौरन और पूरे जोर से। इससे अक्सर सामने वाले का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, वो ज्यादा नरम हो जाता है। अगर आप बचाव करेंगे, बहाने बनाएंगे तो बात और बिगड़ेगी।
ये हिम्मत का काम है पर शायद असरदार है।
बहुत असरदार।
चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग चार। नेता बने बिना ठेस पहुंचाए या नाराजगी जगाए लोगों को कैसे बदलें? ये लीडरशिप के बारे में है।
हाँ, पर ये सिर्फ मैनेजरों के लिए नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं लीडर होते हैं, घर में, दोस्तों में, समाज में।
सही कहा। तो पहला सिद्धांत क्या है यहाँ?
पहला है, प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करें।
अच्छा, मतलब अगर किसी की गलती बतानी है तो पहले तारीफ करें।
हाँ, जैसे नाई शेव करने से पहले साबुन लगाता है ना।
हाँ,
वैसे ही आलोचना से पहले प्रशंसा माहौल को नरम कर देती है, बात सुनना आसान हो जाता है।
ये बात तो है। और गलती बताते समय
सीधी आलोचना से बचें, लोगों की गलतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं।
अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? तारीफ, फिर सुधार, फिर तारीफ।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये तरीका कम चुभता है और सुधार की गुंजाइश ज्यादा बनाता है।
और कोई तरीका लीडरशिप के लिए?
एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें।
हुक्म न दें, सवाल पूछें।
हाँ, ये काम ऐसे करो कहने के बजाय पूछें, इस बारे में आपका क्या विचार है, या क्या आपको लगता है कि ये तरीका काम करेगा?
इससे क्या फर्क पड़ेगा?
इससे लोगों को लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा हैं, उनकी अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है, वो काम को ज्यादा अपनापन से करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें ताकत दी गई है, एम्पावर किया गया है।
वाह, ये तो बहुत अच्छा है।
और शायद सबसे जरूरी बात, खासकर जब सुधार की बात हो, थोड़ी सी भी प्रगति की प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें,
छोटे से छोटे सुधार की भी।
हाँ, लोग आलोचना से मुरझा जाते हैं, प्रोत्साहन से खिलते हैं। जब हम किसी के छोटे से एफर्ट को भी पहचानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो हम उसे और बेहतर करने के लिए हिम्मत देते हैं। ये सीखने और सिखाने का ज्यादा असरदार तरीका है।
सही कहा। तो इन सारे सिद्धांतों को अगर हम देखें तो कुछ मुख्य बातें बार बार सामने आती हैं ना?
हाँ, बिल्कुल। कुछ की थीम्स हैं। सबसे पहला तो है सहानुभूति, एम्पथी, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। ये लगभग हर सिद्धांत की जड़ में है।
दूसरा?
दूसरा है दूसरों को महसूस कराना। ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते अक्सर इसी बात पर टिके होते हैं कि हम सामने वाले के सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं।
सही। और तीसरा शायद नकारात्मकता से बचना।
एग्जैक्टली। आलोचना, शिकायत, बहस, कार्नेगी बार बार कहते हैं कि ये तरीके काम नहीं करते बल्कि नुकसान करते हैं। हमेशा सकारात्मक तरीकों पर जोर देते हैं।
और चौथा है प्रामाणिकता, मतलब जो भी करें दिल से करें।
हाँ, बिल्कुल। सच्ची प्रशंसा, झूठी चापलूसी नहीं, सच्ची दिलचस्पी, दिखावा नहीं, क्योंकि लोग असलियत पहचान लेते हैं। ये सिद्धांत कोई चालाकी नहीं है, ये रिश्तों को बेहतर बनाने के सच्चे तरीके हैं, और ये सब मिलकर हमें अपने लक्ष्य पाने में मदद करते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन अच्छी अच्छी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, अमल में कैसे लाएं?
देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे काम की जगह पर मान लीजिए आप टीम लीडर हैं।
हाँ।
तो अगली बार अपनी टीम को सीधे हुक्म देने के बजाय उनसे सलाह मांगिए, पूछिए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपके क्या आइडियाज हैं, देखिए कैसा माहौल बनता है।
इससे टीम को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे।
बिल्कुल, ये उनके रोल में उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाएगा। या घर पर सोचिए।
हाँ?
मान लीजिए आप अपने पार्टनर या बच्चे की किसी आदत से परेशान हैं, तो सीधे टोकने या डांटने के बजाय पहले उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ कीजिए।
अच्छा।
हाँ, फिर धीरे से प्यार से उस मुद्दे पर बात कीजिए, या शायद पूछिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, हो सकता है उनका नजरिया समझ आ जाए।
इससे शायद झगड़े कम हो।
बिल्कुल। मुख्य बात है अभ्यास, प्रैक्टिस। आप चाहें तो एक हफ्ते के लिए सिर्फ एक सिद्धांत पर फोकस करें।
जैसे?
जैसे तय कर लें कि इस हफ्ते किसी की आलोचना नहीं करनी, या हर रोज तीन लोगों की सच्ची तारीफ करनी है, या जब भी किसी से मिलें मुस्कुराकर मिलें और उनका नाम याद रखने की कोशिश करें।
हाँ, ये छोटे छोटे कदम शायद ज्यादा आसान हो।
और धीरे धीरे ये आदत बन जाते हैं, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है, आपके लिए क्या है?
मेरे लिए शायद ये है कि असली ताकत जोर जबरदस्ती या बहस में नहीं है, असली शक्ति है विनम्रता में, सहानुभूति में और सम्मान भरी बातचीत में। यह हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर हम न सिर्फ अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं बल्कि ज्यादा खुश और संतुष्ट भी रह सकते हैं।
मेरे लिए भी यही है, और ये भी कि ये सिद्धांत कितने कालातीत है, टाइमलेस है। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, पर इंसान की बुनियादी जरूरतें वही हैं, सम्मान पाना, समझा जाना, महत्वपूर्ण महसूस करना।
बिल्कुल, और कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि दूसरों के इन जरूरतों को कैसे पूरा करें, और ऐसा करके हम अपनी भूमिकाओं में, अपने रोल्स में ज्यादा सफल होते हैं और शायद एक बेहतर इंसान भी बनते हैं।
वाकई ये किताब एक खजाना है, इसने सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया है।
हाँ, सच में।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।